नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलदार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पद चाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पद चाप गूंजे, मौत की सुनसान सुनी वादियों में फिर, कि नूतन सर्जना के राग भर दे, शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर, दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं, सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशाले जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है, समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।
काम शांत है। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सब को जाना है, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना है। मलमल के तूने अपने तन को जो है निहारा, निखारा इत्रों की खुशबू से महके शरीर सारा, काया ना साथ होगी ये बात ना भुलाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। मन है हरी का दर्पण, मन ने इसे बसा ले, करके तू कर्म अच्छे कुछ पुण्य धन कमा ले, कर दान और धर्म तू प्रभु को गर है पाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। आएगी वो घड़ी जब कोई भी ना साथ होगा, कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा, ये सोच ले अभी तू फिर वक्त ये ना आना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कोई नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा, खुल जाए नींद जब ही समझो वही सवेरा, हर भोर की किरण संग हरि का भजन है गाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। एक पल की जिंदगानी, एक रोज सब को जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। जीवन अनित्य है, जो कुछ हो रहा है सब कुछ क्षणभंगुर है, अभी अभी है और अभी अभी नहीं है, अभी अभी निंदा अभी अभी स्तुति, अभी अभी जय अभी अभी पराजय, अभी अभी खुशी, अभी अभी दुख। मौसम बदल रहा है, जीवन बदल रहा है, व्यक्ति बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है। और ऐसे अनित्य संसार में आकर हम यदि कहीं पर फंस रहे, अटैच हो रहे, तो वही दुख का कारण बन जाएगा। और जो जीवन में लंबा समय तक चलता है, अंत में वही याद आता है। इसलिए कहा जाता है कि धन्य है वो आत्माएं जो परमात्मा याद में, स्मृति में शरीर छोड़ती है। और ब्राह्मणों के लिए क्या गायन है, हरि का द्वार हो, मधुबन का तट हो, ज्ञान अमृत मुख में हो, ब्राह्मण परिवार का साथ हो, तब प्राण तन से निकले। मधुबन का तट हो, हरि का द्वार हो, ज्ञान अमृत मुख में हो, ब्राह्मण परिवार का साथ हो, तब प्राण तन से निकले। किसको निकलना है तो निकल लो। तो यज्ञ के इतिहास में ऐसी एक आत्मा हुई कि जो मुरली सुनते 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 बाबा के पास पहुंच गई। ये हमारे चाहने से नहीं होगा, ये जीवन भर की जो धारणा है उसका परिणाम होगा। तो यज्ञ इतिहास का ये काफिला कहाँ रुका हुआ है, कराची। और कराची में ढेर सारी बातें हमने देखी और लगभग सारी बातें अभी पूरी हो गई है। तो अभी हमें भारत आ जाना चाहिए। आ जाए या रुके थोड़ा और। स्टीमर इंतजार कर रहा है कराची पोर्ट पर ओखा बंदर के लिए रवाना होने के लिए। परंतु हम फिर भी थोड़ा देर और रुकेंगे, क्योंकि कुछ काम बाकी है, कुछ आत्माओं के अनुभव बाकी है। वो भी एक बहुत अच्छा अनुभव है जो आगे हम देखेंगे, जो पूरी ट्रेन की ट्रेन ले ली। कहाँ से? ओखा से आबू रोड के लिए। इतने सारे लोग हैं तो ट्रेन की ट्रेन ही ले ली पूरी। जब मर्जी चाहो चैन खींचो। वो टीसी आके पूछता है चैन क्यों खींची, वो कहते हैं हमको ये जगह पसंद है, हम यहाँ भोजन बनाएंगे, भोजन खाएंगे। वो तो ये जंगल है, यहाँ कहाँ से भोजन खाओगे, वो तो हमारा सब सामान हमारे पास है। तो आगे की कहानी है। तो कुछ आत्माओं के अनुभव अभी बाकी है, क्योंकि एक बार आगे बढ़े तो हम पीछे नहीं आएंगे फिर, ठीक है। तो हमारी यात्रा चालू हुई थी भारत के इतिहास से, फिर सिंध के इतिहास, और फिर दादा लेखराज का लौकिक जीवन, और फिर अलौकिक जीवन, वो साथ साक्षात्कार, और फिर एक सत्संग की स्थापना, और सत्संग से बना स्कूल, समिति, स्कूल, और फिर सैक्रिफिशियल फायर, यज्ञ, उसके बाद संस्था। तो 5S। और यज्ञ के इतिहास का एक दूसरा क्लासिफिकेशन भी हमने देखा था। सबसे पहला पीरियड फाउंडेशन ईयर्स, कहाँ से कहाँ तक, 36 से 50 तक, 51 से 59 तक ट्रांजिशन पीरियड, 59 तक, फिर 60 से 69 तक कंसोलिडेशन पीरियड, मजबूत करने वाला पीरियड, 70 से 2007 तक पीरियड ऑफ एक्सपांशन, और 2007-8 से लेके तो अब तक इसको क्या नाम दिया, ट्रांजिशन हो गया, इसको और एक नाम दिया था, द शिफ्ट। इसको कहते हैं द शिफ्ट। यहाँ पे बहुत सारे परिवर्तन हो गए धारणाओं में, विचारों में, उसकी चर्चा बहुत बाद में करेंगे। तो अभी हम चलते हैं वापस फाउंडेशन ईयर्स की ओर। तो एक ऐसी आत्मा की आज चर्चा करेंगे कि जिसने बाबा की याद में मुरली सुनते सुनते आत्म पखेरु शरीर से, पिंजरे से बाहर हो गया। कौन थी आत्मा? ऐसी तो बहुत सारी आत्माएं हैं कि जिनके साथ ऐसा हुआ है। एक भाई सुबह सुबह सेंटर गया, मुरली 7 बजे चालू होती है, 6 बजे बाबा के कमरे में बैठा, देखा अभी तक आया नहीं, तो वहीं पर शरीर छोड़ चुका था सेंटर के अंदर। एक माता को भी देखा होगा, कुछ वर्ष पहले भट्टी के लिए आए, शांति स्तंभ पर योग किया, कमरे में गई और फिर आशीष भाई लेके आ गए हॉस्पिटल, तब तक जा चुकी थी। वैसे ही एक दूसरी मलेशिया मॉरिशियस कहाँ थी पता नहीं, मॉरिशियस की एक माता आई पांडव भवन में, अचानक कुछ हो गया, लेके आए, एक दो घंटे में ही चली गई। बाद में उसका बेटा वगैरह आया उधर से, तो उसके बेटे ने कहा मेरी माँ ने कहा था मैं मधुबन जा रही हूँ, वापस नहीं आऊँगी। और ठीक ठाक थी वो, अचानक ही कुछ हो गया उसको। तो ऐसी एक आत्मा जिसकी हम आज चर्चा करेंगे वो थी यशोदा माता, यशोदा मैया, जिसका दूसरा एक नाम था पालामा, पालू की मम्मी। पालू कौन थी, पालू क्यों कहते थे उसको? एक थी संतरु बेटी, एक थी पालू बेटी। संतरु अर्थात संतरे जैसी, और एक थी पालू। आम जो है उसका नाम, उधर का जो आम था उस समय, जो आम मीठा वाला आम आता था उसको पाली नाम था। तो ये पालू पालू पाली आम जो था उस जैसी मीठी थी, इसके लिए इसको नाम क्या दिया, पालू। तो आज इस आत्मा की जीवन की थोड़ी झलकियां हम देखेंगे। और जैसे कहा, इतिहास हम इसलिए अध्ययन कर रहे हैं कि इतिहास में जो लोग हुए हैं उनके जीवन से हम कुछ सीखें। उनके जीवन में कुछ ऐसी धारणाएं थी जिन धारणाओं ने उन्हें मजबूत बना के रखा। उनके जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव थे, हमारे जीवन में भी अब है। और ऐसे उतार चढ़ाव में आत्मा अपनी शक्ति खो देती है, दिल शिकस्त उदास हो जाती है, ज्ञान योगी छोड़ देते पुरुषार्थ करते करते। तो जब ऐसी घड़ी आती है लो, तब कुछ आत्माओं के जीवन चरित्र जैसे हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो अचानक जीवन में फिर से नई ज्योति, नया प्रकाश आ जाता है। चाहे वो व्यक्ति हमारे सामने हो या इतिहास के पन्नों में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। चाहे हमने उस व्यक्ति को देखा हो या न देखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो व्यक्ति सामने है आदर्श है, उसके इर्द गिर्द कितने लोग हैं पर कोई भी उससे कुछ नहीं सीख रहा है, यह भी हो सकता है। और दूर कोई बैठा है उसके लिए वो व्यक्ति आदर्श है और उससे कितना कुछ सीख लेते और धारण भी कर लेते, ये भी हो सकता है। इसलिए वो व्यक्ति का समीप होना न होना कोई मायने नहीं रखता, वो व्यक्ति का साकार होना या न होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो व्यक्ति अब है या इतिहास में कभी होके गया कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उसका जीवन रहा। और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ऐसी इस आत्मा द अनसंग टेल, जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है, जैसे दादियों की कहानियां सबको बहुत ज्यादा पता है, द अनसंग टेल जिसकी बहुचर्चित जो नहीं है, परंतु जिसका जीवन निरंकारी जीवन था, त्याग की वो मूर्ति थी, तपस्वी थी। तो फिर से हम चालू करते हैं बाबा के लौकिक जीवन की तरफ। जो ऑफिशियल डेट है वो तो 1984 ही है, भले किताब में 1976 है बर्थ की, पर ऑफिशियल डेट जो है वो 84 ही है, दादा लेखराज का जन्म। तो शादी कब हुई, अभी इसकी डेट क्या है? एनी कमेंट्स? नहीं, वो तो सब ठीक है, क्योंकि इसकी अलग अलग स्टोरीज है, अलग अलग वर्शंस है, कौन सा सत्य है, परंतु जो सबसे सत्य के नज़दीक है, क्योंकि जो इतिहास हो जाता है कई बार जब वो लिखा नहीं जाता, क्यों, यहाँ किसी को टाइम नहीं था, इंटरेस्ट भी नहीं था, या उस समय ऐसा कुछ ये नहीं था कि लिखे ये डेट वो डेट ये डेट वो डेट, पर जो हमने सुनाया था कि बाबा जब दादा लेखराज 15 वर्ष के जब थे तब उन्हें कलकत्ता भेजा गया। इसकी अलग अलग स्टोरीज है, जो बाबा पर मूवीज बनी हुई है उसमें कुछ कुछ और दिखाया हुआ है कि बाबा जब छोटे है, वो छोटा बालक अपने पिताजी को ले जा रहा है बैलगाड़ी से और बैलगाड़ी में मृत्यु हो गई, परंतु ये कहानी थोड़ी कहानी जैसे लगती है, ये शायद नहीं हुआ हो। जो सत्य है वो कुछ और है। 50s में कहाँ गए? कलकत्ता भेजा। कलकत्ता ही क्यों भेजा? क्योंकि उस समय भारत की राजधानी कौन थी? कलकत्ता। दिल्ली कब बनी? उसके बाद नहीं, कब? उसके बाद तो बनी, क्योंकि उसके बाद तीसरी तो कोई है नहीं। कब? इतिहास हमने देखा है, स्टडी किया है। 49 स्टडी करो। और एक काम दिया था नालंदा का, ढूंढा कि नहीं? नहीं। हम्म, समय का पाओ 1911। तो 15 वर्ष के तब जे जब कलकत्ता गए, और कलकत्ता में जहां नौकरी थी वो 3-3 साल का टर्म रहता था वहां। पहला 3 साल, फिर 3 साल के बाद पहली बार 18 साल की उम्र में बाबा घर गए पहली सैलरी लेकर। कितनी रुपए थी? 15 रुपए लमसम सैलरी, 15 रुपए की सैलरी रखी। तो शादी कब हुई? इसका शायद 18 साल की उम्र, एक अध्ययन में 18 साल, और फिर जशोदा की उम्र क्या थी? 9 साल, बाल विवाह। उस समय यही प्रथा थी। अब एक झलक डालते हैं इनके लौकिक जीवन की ओर। तो सबसे पहली चीज, धर्म पत्नी के रूप में ये कैसे थी? अत्यंत प्रतिव्रता नारी। यहाँ तक कि बाबा जब नहाकर बाहर निकलते थे तो क्या करती थी? चरणामृत पीना, तिलक लेना। तो उससे ये पता चलता है कितना तभी से, क्योंकि जो भक्ति में जो कुछ था, फिर जब ज्ञान चालू हुआ वही धारणाएं ज्ञान की धारणाएं बन गई। जो पति के प्रति थी वो परमात्मा के प्रति बन गई। फिर वही निष्ठा, वही हाजी, वही आज्ञाकारी था जो पहले यहां थी, वही उन्होंने ज्ञान का रूप धारण कर लिया। फिर तो पति के प्रति भक्ति भाव, जैसे वही परमेश्वर है। एक तो ये बात। दूसरा स्वभाव, दादी पालू निर्मल शांता दादी लिखती है, हमें कभी याद ही नहीं कि हमारी, उसको मैया कहते थे सब, या पाला माँ कहते थे, मैया ने हमको कभी डांटा, हमें कभी याद ही नहीं है। परंतु क्या देती थी? अभी कुछ गलती भी हो जाती थी तो चॉकलेट बिस्किट कुछ दे देती थी और समझाती थी कि ऐसा नहीं करना है। तो वो जो डांटने का स्वभाव है वो कभी था ही नहीं। नहीं तो बच्चे गलतियां करते हैं तो हम क्या करते हैं? डांटते हैं उसको। तीसरा व्रत, उपवास, लौकिक जीवन में ही ये बहुत ज़्यादा था। यहाँ तक कि जो कुंज दादी बताती है अनुभव में, कि कुंज दादी और जशोदा 1958 में 14 मास कुंज दादी इनके साथ थी पटना में। तब दादी के बारे में कुंज दादी ने बहुत कुछ सुना उनसे और ये सारे अनुभव लिखे। तो जो लौकिक दाम्पत्य है ये दोनों, जशोदा मैया कहती थी आज ये दिन है तो आज हमें पवित्र रहना है, आज उपवास का दिन है, आज ये त्यौहार है, आज वो त्यौहार है, आज ऐसा है कल वैसा है, आज ये है इसलिए प्योर रहना है। बाबा कहते थे कि तुम्हारे 365 दिन ही कुछ ना कुछ त्यौहार के है। मतलब कहने का भाव, व्रतों में नियमों में अपने आप को जैसे कैद कर रखा है, और यह सबसे बड़ी सेफ्टी का साधन है। एक है निरंकुश जीवन जिसमें कोई नियम नहीं है, कोई व्रत नहीं है, कोई नियम नहीं है। ये तभी की साधना है कि हर दिन जैसे एक त्यौहार है, आज ये है आज वो है, आज ये है कल वो है। और सबसे ज्यादा इनको जो रिस्पेक्ट, जो महत्व कुंज दादी कहती, वो था गुरुवार का भोग। ये ज्ञान में आने की बात की बात है। कभी हम इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। एक बार इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि ये लोग जब पटना में थे, जो मेन सेंटर था सिटी में, वहाँ प्रकाशमणि दादी और निर्मल शांता दादी थे, यहाँ पर यशोदा मैया और कुंज दादी थे। बारिश इतनी ज़्यादा है कि कुंज दादी ने कहा आज नहीं जाएंगे हम, बारिश बहुत ज़्यादा है। पर यशोदा मैया ने क्या कहा कि आज तो जाना ही है। और जो दूसरी क्लास की माताएं थी उनके साथ वो गई और कहा कि हम कपड़े लेकर जाएंगे, फिर कपड़े बदलेंगे वगैरह वगैरह। अर्थात भगवान के यज्ञ में जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति सम्मान, रिस्पेक्ट। जैसे उस दिन हमने उसका भी देखा था कि सातमा का जयंती बहन की माता जी, रजनी माता, 2 दिन भोग लगाते थे लंदन में। कब? जब वहां कोई भी सेंटर नहीं था, कुछ भी नहीं था। 1957 में ज्ञान मिला और तुरंत लंदन चले गए। वहां पर उस वातावरण में इस तरह की धारणाएं थी। इसलिए दादी जानकी कहती है, जितनी धारणाएं स्ट्रिक्ट उतनी बाबा की मदद मिलेगी। धारणाओं में ही जो कमजोर है उसको मदद का भी अनुभव नहीं होता है। जिसका अमृत वेला ही डगमगा रहा है, जिसका मुरली का चिंतन ही नहीं हो रहा है, बस सुन रहे हैं और छोड़ रहे, उनको मदद कहां से मिलेगी? और बाबा से फिर भीख मांगते रहते हैं दिन भर, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ये निश्चय की परिभाषा नहीं है। निश्चय अर्थात निश्चय, कुछ भी हो जाए, जाना है मतलब जाना है। इसलिए जैसे मौसम बदलता है, क्लास में मुरली सेंटरों पर आने वालों की संख्या में परिवर्तन आता है, ठंड के साथ, बारिश के साथ और धूप, सब में अलग अलग अटेंडेंस होती है। अमृत वेले का तो कैसे रिकॉर्ड रखेंगे, वो तो उससे भी सूक्ष्म है। तो ये एक बात। दूसरा, जब से सबसे पहला किशन, फर्स्ट बेटा, दूसरा कलावती, इसका क्या हुआ? बचपन में ही इसने शरीर छोड़ दिया। तीसरा पालू, चौथा पुट्टू, पांचवा नारायण और छठवा सूर्य। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 1950 में यहाँ आ गए और नारायण दादा ने क्या कहा कि मैं मुंबई जाता हूँ, और फिर 1954 में शादी की ज्योति, और उसी के साथ सूर्या ज्योति वो भी गई, उसने फिर बाद में भी शादी की 62 में ओम प्रकाश। तो ये दो नारायण दादा ने बाबा को खत लिखा 54 में कि मेरी शादी है, उसका इनविटेशन कार्ड भेजा, तो आप आओ। उसी समय जशोदा मैया भी वहीं पर है मुंबई में। तो जैसे ही तार मिला बाबा को, बाबा ने कहा जशोदा मैया को, आप आ जाओ इधर वापस माउंट आबू। नारायण दादा ने जशोदा मैया को बहुत रिक्वेस्ट किया कि तुम आप रुको, 2-3 दिन में ही मेरी शादी है अभी, पर ऊपर से ऑर्डर आ गया, और वो ऑर्डर किसी पति का नहीं था, वो ब्रह्मा का ऑर्डर था। इसलिए वो रुकी नहीं वापस। वो बाबा कौन सा बाबा जिसने अपने पहले बेटे की शादी इतनी धूमधाम से की? वो बाबा जिसने पुट्टू की शादी, ये भी हमने देखा था कि कैसी थी, मनोरिंद्र दादी डिस्क्राइब करती है ना, वो शादी ऐसी थी कि जैसे देवताओं की शादी हो रही है, इतना थर्ड बार्ड। वो बाबा जिसने अपनी दूसरी बेटी पालू की भी शादी कराई इतने धूमधाम से, और यहां बीच में ज्ञान मिल गया। अब वही शादी की परिभाषा बदल गई, शादी है बर्बादी, चेंज हो गया कॉन्सेप्ट। अब तक जिसने इतनी शादियां कराई वहां पे कॉन्सेप्ट बदल गया, और नारायण दादा जा रहे, उसको कुछ भी नहीं दिया जाते समय, क्योंकि वो तो यज्ञ का ही बच्चा है, उनका भी बच्चा है, पर कुछ भी नहीं दिया, कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं। उसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि एक व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है वो मुंबई जैसे शहर पहुंचता है और इतना बड़ा कुछ कमाई करके दिखाता है, ये एक अलग पुरुषार्थ है। कहते हैं बाबा उनका जो बंगला था परिजात नाम का, मरीन लाइंस पर अभी भी है, वहां जब एक बार गए थे, मुरली चलाने गए थे बस, वो भी ऐसे कि जैसे बिल्कुल कोई आसक्ति नहीं है, बाद में बेटा है, अनासक्त वृत्तियां, योगी अर्थात लौकिक में भी अनासक्त। फिर आते हैं इधर, तो ये जो यशोदा है शुरुआत से ही त्याग मूर्ति रही है, शुरुआत से ही तपस्वी मूर्त रही है, भक्ति में भी नियम व्रत और नाम उनका था यशोदा, और जैसे हमने कहा यज्ञ इतिहास में सबसे पहले तो ब्रह्मा को ही क्या माना गया, भगवान, गॉड, गॉड ब्रह्मा, ये जो है इसी को, क्योंकि इसी में सारे साक्षात्कार होते थे। सेकंड स्टेप आई अंगुष्ठाकार या एक, और फिर ज्योतिबिंदु, वो बहुत बाद में। सभी दादियों के वर्षन में एक ही चीज आती है कि ज्ञान स्पष्ट नहीं था, धीरे 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 ज्ञान स्पष्ट हुआ। तो इनमें भी वो किसको देखती थी? कृष्ण को, परंतु उनका नाम था यशोदा, तो इसमें किसको देखती थी? बालकृष्ण को। तो वो एक भाव था। ये प्रश्न पूछा गया दादी से, आपने बाबा को बाबा कब से कहना चालू किया? तो उन्होंने कहा कि जब से सब लोग मम्मा को मम्मा और बाबा को बाबा कहने लगे, मैं भी तब से ही कहने लगी। और बाबा ने एक शर्त रखी थी, अगर तुम्हारे निश्चय की परीक्षा है तो ये जो है ये कन्या वो तो छोटी है, और वास्तव में देखा जाए तो उसकी शादी होने वाली थी। तो यशोदा ही कहती है बाबा से कि बाबा इसको मीरा बनाओ, इसको उधर मत जाने दो, उसकी लौकिक रिश्तेदार है वो। परंतु बाद में वही छोटी राधा, ओम राधा, मम्मा बन रही है। तो बाबा कहते तुम्हें उसकी गोद में जाना है छोटी बच्ची बनकर, तभी ये माना जाएगा कि तुम मर्जीवा जन्म तुम्हारा हुआ है, तब तक नहीं। उसमें भी वो निरंकारी है। और सबसे दूसरी बात, यशोदा मैया ने कौन सी सेवा की, तो उन्हें कोई पर्टिकुलर सेवा नहीं दी गई कराची पर। यहाँ जब मधुबन माउंट आबू में आए तब वो सब्जी डिपार्टमेंट देखती थी। उसमें एक बात बहुत अच्छी और सूक्ष्म है, वो ये कि ये पूछा गया कि आप कौन सी सेवा लोगे, बाबा ने पूछा, तो यशोदा मैया ने कहा था मैं झाड़ू पोछा लगाने की सेवा लेती। वो बहुत ऊंचे कुल से आई हुई है पहले ही लौकिक में, और यहाँ पर भी जो यज्ञ का फाउंडर है उसकी वाइफ है, फिर भी कौन सी पोस्ट ली, जब पूछा कि आप कौन सी सेवा करोगे, उन्होंने कहा झाड़ू पोछा लगाने की। क्यों? उसने कहा अगर मैं कोई दूसरी सेवा लूँ तो मेरे में अहंकार आ जाएगा, ये जो ब्रह्मा है इसकी मैं पत्नी हूँ, इसलिए मैं ये छोटी सेवा। ये कितना उसका निरंकारिता है, ऑलराउंड सेवा। कुंज दादी कहती है मैं झाड़ू लगाती थी वो पोछा, मैं बर्तन देती थी वो बर्तन मांजती थी। उसको अपना कोई अहंकार था ही नहीं कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, कुछ भी नहीं। जैसे साधारण लोग कपड़े पहनते थे साधारण ड्रेस, वैसे वो पहनती थी। नहीं तो लौकिक में इतने आभूषण, लाखों के गहने रहते थे उसके, यहाँ आने के बाद एकदम सिंपल भोजन, एकदम सिंपल। तो चाहे भोजन की बात, चाहे वस्त्रों की बात, चाहे सेवा की बात, हर चीज में बहुत निरंकारी। और दूसरी और एक जो कुंज दादी कहती है कि जब तक वो मैं नहीं आती थी तब तक खाना नहीं खाती थी। वो कहती थी बिना कुमारियों को खिलाए मैं कैसे खाऊं, बिना दूसरों को खिलाए खाना ही नहीं खाती थी। एक एक चीज जो है बड़ी बड़ी सूक्ष्म है और हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। हर आत्मा के जीवन में कहीं ना कहीं त्याग छिपा है। और यही नहीं, हम में से यहां भी सब लोग बैठे हैं, हमारे जीवन में भी बहुत सारा त्याग छिपा हुआ है हर एक में, पर कई बार हम अपने ही त्याग के महत्व को भूल जाते और साधारण हो जाते, तो निरंतर वो नशा रहे। तो कहने का भाव कैसा, इनके जीवन में हर जगह त्याग समाया हुआ है। बाबा ने अपनी चल अचल सारी संपत्ति क्या कर दी, स्वाहा कर दी, और एक कमेटी बनाई 17 फरवरी 1937 कमेटी बनी, अपना सब कुछ दे दिया, सारे गहने दे दिए और एक चीज रखी बस। कौन सी चीज रखी, नथनी। बाबा ने कहा ये नहीं देना है क्या, बाबा ने कहा, उसने कहा ये तो सुहाग की निशानी है आपका। तो बाबा ने कहा मैं खुद भी तो स्वाहा हो रहा हूँ यज्ञ में, उसने वो भी निकाल के रख दिया। माताओं का मोह होता है सबसे ज्यादा किस में होता है, गहनों में मोह होता है। क्यों होता है, सतयुग से पहनते आ रहे हैं, आदत है। सोने में ऐसा है क्या जो इतना मोह होता है लोगों को पुरानी आदत है इसीलिए शायद, तो वो भी निकाल के रख देती है। त्याग, सर्वस्व समर्पण, अपना कुछ भी नहीं, अपने लिए कुछ भी नहीं। साधारण जैसे बाकी सब लोग हैं वैसे हम हैं, मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए तो वो वाली सेवा चुन ली झाड़ू पोछा लगाने की। सेवाओं का एक सबसे बड़ा महत्व क्या है, जो हमारे अंदर के अहंकार को तोड़ता है। सेवा का महत्व क्या है, हमारे अंदर के मैं को तोड़ता है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, मेरे में ये कलाएं हैं, मेरे में वो कलाएं हैं, ये विशेषता है वो विशेषता है। तो जैसे हम कोई भी सेवा करने जाते हमारे अंदर का जो मैं है उसको तोड़ने का काम ये सेवा करता है। तो यज्ञ में हर प्रकार की सेवा, ऑलराउंडर सेवा धारी बनना है। ये केवल उनको ही नहीं हमें भी बनना है। ऐसा नहीं कि ये मेरी सेवा नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। अगर कोई नहीं है तो सब कुछ करो, सब कुछ जैसे मेडिकल साइंस होता है, हमने वहाँ देखा है कि वो लोग बहुत जल्दी सब कुछ सीखते हैं। वो जो नए मेडिकल स्टूडेंट्स आते हैं या नए डॉक्टर्स आते हैं जो सब कुछ करने को तैयार होते हैं, और कोई कोई होते हैं जो कहते हैं ना ये मेरा काम नहीं, ये मेरा काम नहीं, ये मेरा काम नहीं है, वो करेगा वो करेगा। हम लोगों को याद है जब हम लोग इंटर्न्स थे, सब कुछ करते थे, यहाँ तक कि पेशेंट अगर कोई है नहीं लेके जाना तो पेशेंट को स्ट्रेचर से लेके जाने से लेके सब कुछ दिन रात, क्योंकि अगर पूरा सब कुछ सीखना है तो कंप्लीट कमिटमेंट चाहिए हर चीज़। ये नहीं ये मेरा काम नहीं है मैं वो नहीं करूँगा, सब कुछ। और वहाँ पे हमको सिखाने वाले बड़े डॉक्टर्स कोई नहीं रहते थे, कौन सिखाता था? वो जो मामा और जो मौसी और जो कंपाउंडर जो 20 साल से है वहाँ पे, 30 साल से, 40 साल से हॉस्पिटल में काम कर रहे, वो लोग सिखाते थे। पर हमने ये भी देखा कि कुछ कुछ ऐसे थे साथी, फ्रेंड्स, डॉक्टर्स जो उनको बहुत छोटा समझते थे, ये हमको क्या सिखाएंगे। पर हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा नॉलेज तो उन्हीं के पास होता है। डॉक्टर्स आते देख के चले जाते, 24 घंटे कौन रहता है पेशेंट के साथ, नर्स रहती है, वो लोग ज़्यादा सिखाते हैं, उनको बहुत गहरी गहरी बातें पता रहती है, छोटी छोटी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज क्या क्या होती है वो उन्हें पता रहती है, तो वो लोग बहुत सिखाते हैं। वैसे ही यशोदा मैया जो है वो दिन रात ऑलराउंडर सेवादारी, ऐसी कोई भी सेवा नहीं है जो इन्होंने नहीं की। यहाँ यज्ञ में आए तो सब्जी, जो भी सेवा दी हर चीज़ के लिए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और जब हम हाजी करते कोई सेवा के लिए तो वो सेवा करने की शक्ति हमें भर जाती है। पहले ही माँ मना कर दो कि मैंने कभी किया नहीं है, मेरे से नहीं होता है, तो ना में एक निगेटिव पावर है और हाँ में एक पॉजिटिव एनर्जी है। वहाँ जाके भाषण दे के आओ, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे कभी दिया ही नहीं भाषण, मुझे आता नहीं है। जीसस क्राइस्ट का उदाहरण है, शिष्य आते वो कहता जाओ मेरा संदेश सबको दो, वो कहता है हम आपका संदेश, लोग पहले से ही विरोधी है आपके, जहाँ हम जाते हैं जहाँ आप जाते हो पत्थर मार मार के भगाते, और आप कहते जाके संदेश दो, और हम लोग कौन? वो जो पारा शिष्य थे वो कौन थे? कोई मछुआरा था, कोई नौकर था कहीं पे, ये लोग थे। अब उनको कहाँ से भाषण देने की आदत, और ये कहता है कि जाओ भाषण दो, वो भी उन लोगों के सामने जो विरोधी है। जीसस क्या कहता है? तुम जाओ बस, क्या तुमको बोलना है ये उस समय दिया जाएगा तुमको, क्योंकि तुम किसका संदेश ले जा रहे हो? मेरा। इट शैल बी गिवन अन टू यू एट दैट आवर, वो तुमको दिया जाएगा, तुम बस खड़े हो जाओ जाके, अपने आप उस समय अवतरित होगा वो पॉइंट कि ये बोलना है, तो ये काम है। तो कहने का भाव ना जी नहीं, हर चीज में क्या करना है, हाँ जी। दादी कहती है कि 14 महीने मैं उनके साथ रही, बाद में बीमार पड़े, कैंसर डिटेक्ट हुआ, उसका ऑपरेशन भी हुआ 61, और निर्मल शांता दादी वहाँ उनको देख रही थी, और वहाँ की वो लास्ट घटना है कि एक सुबह निर्मल शांता दादी मुरली पढ़ रहे थे और उन्होंने अपना सिर वहाँ रख दिया उसकी गोद में और वहीं पर शरीर छोड़ दिया, मुरली सुनते सुनते। बाबा से कभी एक और एक प्रश्न पूछा गया, कोई एक दूसरी दादी थी उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, वो गुड़गांव कहीं जाती है और वहाँ शरीर छोड़ती है, तो बाबा को पूछा गया, बाबा आप तो कहते हो मधुबन का तट हो, हरि का द्वार हो, पर वो तो वहाँ थी, फिर कैसे, फिर उसकी क्या गति है? बाबा ने तब भी कहा था, मधुबन अर्थात मधुबन किसी स्थान का नाम नहीं है केवल, मधुबन जो है उसकी केवल भौगोलिक परिभाषा नहीं है, ये जो चार दीवारें हैं ये मधुबन नहीं है, मधुबन निराकार है, जहाँ जहाँ परमात्मा की मुरली चल रही है वो मधुबन है, जहाँ पवित्रता है वो मधुबन है, जिसके मन में परमात्मा मुरली का चिंतन मनन हो रहा है वो स्थान मधुबन है, जिसके मन में निरंतर सेवा का भाव है वो मधुबन है, जिसके मन में यज्ञ के प्रति आदर सत्कार सम्मान है, जो रक्षक है यज्ञ के वो मधुबन है। तो इसलिए मधुबन किसी भौगोलिक व्यवस्था का नाम नहीं है केवल, नहीं तो सब कहेंगे हमको मधुबन में आके शरीर छोड़ना है, यहाँ भीड़ लग जाएगी स्ट्रेचर पर जाने वालों की, बस लास्ट मोमेंट है चलो इधर, इतना आसान भी नहीं है, सस्ता, इतना सस्ता सौदा नहीं है। तो पालना की, तो मन की स्थिति, जो जीवन भर रहा वो उसी स्थिति में शरीर छोड़ा अंत में, सभी दादियों को भी हमने देखा होगा कि किस भाव में थे वो, उपराम जैसे थे संसार से, कोई इस संसार की कोई बात जैसे उन्हें स्पर्श नहीं कर रही थी, ऊपर हो गए थे इस संसार, खेल हो गया था उनके लिए ये सारा, शरीर भी जैसे कुछ है नहीं है, जैसे वो शरीर में थे पर शरीर में थे ही नहीं अंतिम अवस्थाओं में, वो तो बस वो मॉनिटर वगैरह दिखा रहा था बस मेडिकली कि ये आत्मा है, लाइव है, बस बायोलॉजिकल डेथ नहीं हुई है, बाकी उपराम थे देह से। और वो अवस्था भी कब आई? क्योंकि जीवन भर उस अवस्था का अभ्यास किया था, इसलिए, नहीं तो ऐसी अवस्था नहीं आती है। तो कहने का भाव, जीवन भर हम क्या कर रहे हैं? और एक लौकिक में जाते हैं, शी वॉज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट अर्थात बाबा की जो इतनी भक्ति थी उसका भी स्रोत यशोदा थी। क्यों? क्योंकि उसका खुद का ही जीवन इतना ऊंचा था, इतना भक्तिमय जीवन था, उसको सारे त्योहार याद है, कुछ भी हो जाए तो आज ये है, आज वो है, आज वो है, इसलिए बाबा के अंदर भी वो भाव जागृत हुआ कि मुझे और आगे बढ़ना है अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में। दूसरी एक बात जो हम सबको पता है, जब बाबा 60 वर्ष के आसपास थे और साक्षात्कार अभी हुए नहीं थे, ये प्रस्ताव किसका था? वानप्रस्थ का, यशोदा का। पर बाबा ने क्या कहा था? नहीं, अभी रुको, थोड़ी कमाई और करता हूँ, थोड़ी कमाई और करता हूँ। मतलब इनके मन में तो पहले से ही वैराग है, जो बाबा में भी नहीं है अभी, वो अभी सोच रहे विस्तार का, तो इसके मन में तभी से वैराग है। हाँ, बच्चों के लिए और कुछ करूँ। पालना की शक्ति एक बहुत अच्छी शक्ति है जो हमें धारण करनी है, सबकी पालना करनी है, चाहे छोटे या मन से बड़ों की भी। जब हमको लगता है ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तब दादी गुलजार ने कभी कहा था, छोटी बहनें आ गई थी कहीं दादी के पास और सब कंप्लेंट्स करने लगी अपनी इंचार्ज की कि हमारी ऐसी करती है, वैसी करती है, ये करती है, वो करती है, दादी को एकदम घेर लिया सबने, दादी अब आप बताओ क्या करना चाहिए, वो सारी छोटी छोटी बहनें। दादी का क्या उत्तर था? दादी ने कहा था, मन से ये सोचो कि मैं उसकी माँ हूं। क्या सोचो? मैं उसकी, उसके सामने मत बोलना बट पालना की शक्ति, मुझे उनकी पालना करनी, माँ बन के सूक्ष्म रूप से, क्योंकि हर आत्मा जो कुछ कर रहा है उसका कुछ तो कारण है, किसी के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया, ऐसे ही नहीं आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो तपस्वी नहीं है, वो योगी नहीं है, वो दूसरों की निंदा करता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में त्याग, तपस्या, प्रेम नहीं है, बाबा से उसे कम प्यार है, वो सब है, पर परिस्थितियों ने उसे ऐसा बना दिया, क्या करे, वो चिड़चिड़ापन आ गया, वो बाह्य मुक्ता आ गई, सेवा इतना विस्तार था सेवाओं का कि सेवाओं की वजह से वो तपस्या ही छूट गई, वो अंदर ज्ञान का चिंतन, मनन, अध्ययन हो नहीं पाया, इसलिए स्वभाव ऐसा बन गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे पीछे है, वो फिर भी हमसे आगे है, और उसका निश्चय इसके वजह से तो 40 साल 50 साल से यहाँ है, हमने अगर वो सहन किया होता जो उसने सहन किया तो शायद हम भाग गए होते उसके पास अनुभव है और अच्छा है, वो होना चाहिए। तो बड़ी सूक्ष्म बातें हैं ज्ञान की, जो अभी अभी सुना रहे थे इंग्लिश में भी, कि दादी जानकी पूना में थी और दादी ने बाबा को खत लिखा, बाबा यहाँ पर इतने विद्यार्थी आ रहे, इतने स्टूडेंट्स आ रहे, सभी इतने निश्चय बुद्धि है, बहुत अच्छा, सबकी लगन है। बाबा ने कहा ये हो नहीं सकता, ऐसे कैसे होगा, सबकी लगन है और सारे आ जाए उस समय। बाबा ने कहा एक काम करो, कल सेंटर क्लास में अनाउंस किया करो कि आज से मुरली क्लास, कल से बंद, सेंटर का दरवाजा नहीं खुलेगा। तो दादी ने वैसा ही किया, मुरली क्लास के टाइम पे दरवाजा बंद, और बहुत देर के बाद फिर दरवाजा खोला तो देखा एक भाई बैठा हुआ है वहां। उसको पूछा तुम क्या कर रहे हो वो कहता है अरे भगवान धरती पर आया हुआ है, बिना मुरली सुने स्वर्ग का राज्य कैसे प्राप्त होगा सुबह से बैठा हुआ है वो। तो दादी ने खत लिखा बाबा को, बाबा ये ऐसा हुआ। बाबा ने कहा बस ये एक ही है निश्चय बुद्धि, बाकी सब फेल, इतना निश्चय। तो वैसा ही निश्चय यशोदा मैया को भी था, इसलिए नहीं कि उसके पति में भगवान आ रहे, वो शिव बाबा पर निश्चय था कि ये है जिसको हम इतने समय से ढूंढ रहे थे, वो अब इस तन में आया है, इसके लिए वो उनसे भी एक डिटैचमेंट थी। और सबसे बड़ी बात, जब निर्मल शांता दादी के पास उन्होंने शरीर छोड़ा, निर्मल शांता दादी ने बाबा को खत लिखा। बाबा का उत्तर क्या था? तुम्हारी अम्मा और मेरी बीवी। तुम्हारी अम्मा कब गया? 1961। ये दो घटनाएं ऐसी है बाबा के जीवन में, 1961 और 65। अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उसको हिला दिया होता। 1961 में लौकिक पत्नी ने शरीर छोड़ा, और 65 में जिसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दे रखी थी, जो सब कुछ देख रही थी, जैसे हमने देखा कराची में और हैदराबाद में, सब जगह किसकी साइन है? सारे कोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स में जितने खत सारे जगह भेजे, किताबें जो निकली उसमें किसकी साइन है? इसमें ओम राधे की साइन है। वही चली गई 65 में। और 61 में बाबा तो आए भी नहीं मुंबई में, अंतिम संस्कार में भी नहीं थे। किसने अटेंड किया फिर? वहाँ के जो भी बच्चे थे उस समय, रमेश भाई, उषा बहन, शायद डॉक्टर निर्मला, ये सारे जो लोग, नलिनी बहन परिवार, ये सारे लोग जो थे वहाँ के सेवा केंद्र में आने वाले, उन्होंने, बाबा गए भी नहीं वहाँ, मुंबई में शरीर छोड़ा, वहीं पे अंतिम संस्कार, माउंट में नहीं। 1961, डेट्स को पकड़ के चलना है, ठीक है? टाइमलाइन बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री में, क्योंकि ये हमारे बहुत काम आएगा। तो बीवी मरे तो अलवा, और अम्मा मरे तो अलवा। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, इतना आसान नहीं है। लौकिक में मोह होता है ज्ञानियों का, जो दूसरों को आत्मा की अमरता की बातें सुनाते हैं उनकी आंखें आंसुओं से भीग जाती है, रो रो के। ऊपर से तो आत्मा अमर है, अविनाशी है, मृत्यु प्रवचन दूसरों के लिए, और अंदर से दुख। और वो दुख भी क्यों होता है? क्योंकि अटैचमेंट है, निक गहरी अटैचमेंट है। बाबा ने कितना अंदर से काम किया होगा, सारे रिश्ते नाते अटैचमेंट्स को खत्म कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि उसको प्यार नहीं है। सेम विश्व किशोर भाऊ ने जब शरीर छोड़ा, रात भर योग किया, रात भर सकाश दी, और जब शरीर छोड़ा, बाबा को पूछा, वो डेड बॉडी को लेके आए माउंट आबू, क्या कहा? आत्मा तो चली गई, अब क्या करना है? नष्ट मोह। तो इतना त्याग, क्या क्या सीखेंगे? ये एक सीख लिया, और क्या करेंगे? सबकी पालना, एक नया शब्द है, पालना की शक्ति, पालना करने की शक्ति। किसकी पालना करनी है? केवल जो छोटे हैं उनकी नहीं, जो साथी है उनकी भी, जो बड़े हैं उनकी भी, सबकी माँ बनना है जगदम्बा, केवल एक की नहीं, सबकी। और जहां रखे वही मधुबन, ये नहीं, जिद नहीं करते बैठना है मुझे ये डिपार्टमेंट में रहना है, मुझे नीचे ही रहना है, मुझे ऊपर रहना है। जहां वो रखे, जिस हाल में वो रखे, रहो, वो समर्पणता है। और क्या सीखेंगे? नष्टो मोह। और क्या सीखेंगे? नियम, नेम, व्रत, जो ब्राह्मण जीवन के व्रत है, नियम है, हर चीज धारणाएं, उनको पकड़ के रखना है। और भोजन इनका इतना ज्यादा सिंपल था, सबसे सिंपल भोजन था। भोजन जितना गरिष्ठ, जितना भारी होगा उतना मन भारी होगा, उतना विकारों की जागृति होगी। जितना वो पका पकाया हुआ होगा और जितना उसमें गरिष्ठता होगी, उतना अंदर का राक्षस जागता है। खाते खाते लोभ जागता है, वासनाएं जागती है, और फिर हम सोचते भारी भारी क्यों लग रहा है आज फूड। अगला क्या सीखेंगे? और जो जो बातें बताई फिर रिपीट करना है। क्या सीखेंगे? सभी सेवा करनी है, ऐसा नहीं है मेरी सेवा नहीं है, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो, मुझे बड़ी सेवा चाहिए, किचन वाली सेवा मुझे नहीं करनी है, मैं भाषण देने की सेवा करूंगी। इसमें क्या होता है? भाषण देवा, इसमें ज़्यादा ये मिलता है ना अटेंशन, वो सेवा, ये छोटी सेवा, ये किसी और को भेज दो। कौन आया है? अच्छा वो आया है, क्लर्क आया, हाँ तुम जाके सेवा उसका कोर्स करो। कौन आया? कलेक्टर साहब आया, मैं सेवा उनका कोर्स कराऊंगी। हर एक आत्मा है, ये भूलना नहीं है। और क्या सीखेंगे? यशोदा मैया से हाँ जी का पाठ, जो कहा वो करो, अपने आप सीखने लगोगे। हमें याद है जब हम इंटर्न थे, फर्स्ट इंटर्नशिप चालू थी ऑर्थोपेडिक्स में, फर्स्ट, अभी MBBS पूरा हुआ और इंटर्नशिप चालू हुआ, कभी कोई पेशेंट हैंडल नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, और अचानक एक रात को एक इमरजेंसी आ गई, एक पेशेंट आया, हेड इंजुरी था, पूरा ब्लीडिंग ब्लीडिंग हो रहा था, उसको वेंटिलेटर पे डाला, और उस समय सीटी स्कैन कुछ नहीं था, वो तभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ था, ये 2001 की बात है। तो वो पेशेंट को लेके जाना था नागपुर, और हम कहीं और थे, 4 घंटा दूरी पर। तो कहा गया कौन लेके जाएगा, हमने कहा हम जाएंगे, कभी गए नहीं थे, कभी देखा नहीं था, कभी कुछ भी नहीं पता था, कभी हाथ नहीं लगाया था कोई कुछ को, हाँ बोल दिया। और वो पूरी रात यात्रा रही, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, कहीं ऑक्सीजन फेल हो गया, हमको समझ में नहीं आ रहा है, पर हम अपना, वो तो भक्ति में थे, हम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर मंत्र जाप और ये सब करते करते वो पेशेंट को लेते हुए पहुँचे। पर बहुत सी बातें हुई, पर बहुत कुछ सीखने को मिला, वो फर्स्ट अनुभव था, फर्स्ट। अभी उसका एक एक चीज नोट कर रहे, पल्स पे हाथ है कितना ये है, फिर उस पेशेंट उल्टी कर रहा है, वो ईटी ट्यूब में से ब्लड आ रहा है, पूरा हमारा कपड़े खून खून से ये हो गए, पर हमने कहा इसको मैं पहुंचा के रहूंगा कुछ भी हो तो, बीच में ऑक्सीजन चला गया, क्या करूं, ऑक्सीजन खत्म। वो वहां वर्धा में, फिर वो हॉस्पिटल में पूरी गाड़ी लेके गया, फिर वहां पे नहीं था, फिर दूसरी जगह लेके गया, फिर वहां से देखा अंदर घुसा कोई भी नहीं था, फिर वहां से एक सिलेंडर लिया और दूसरा सिलेंडर चेंज किया, वो लाइन आउट हो गई अंधेरे में, टॉर्च में वो एक था बेचारा ड्राइवर, उसको कहा टॉर्च पकड़ो, और फिर लाइन लिया और फिर चालू परंतु हम मना कर सकते थे कि मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं, हमने कहा हाँ, किसी ने ये नहीं पूछा कि तुमने कभी गए हो कि नहीं, इतना पावरफुली कहा हाँ, तो उसने कहा भेजो इसको पहुंचे पेशेंट को सीटी स्कैन के टेबल पर, लिया था, वहाँ उसने दम छोड़ा, उसने शरीर छोड़ दिया, क्योंकि बहुत भयंकर ब्लीडिंग था अंदर, वो जाने वाला ही था, परंतु पहली बार हमने तो सीटी स्कैन देखा वहाँ पर, पहली बार देखा, उस समय इंट्राकार्डियक इंजेक्शन दिया करते थे यहाँ सीधा हार्ट में, अभी तो नहीं देते हैं, तो वो सब वहाँ देखा, और फिर वापस पेशेंट की तो डेथ हो गई। अभी आते समय वापस पीछे डेड बॉडी, हम आगे बैठे हुए, आते समय पेशेंट जिंदा था, पर अब हम जा रहे हैं वापस, और फिर अचानक गीत बजा, राजी तेरी रजा में मुझे ऐतराज क्या है तेरे पास बिजली आए मेरे पास आशियाना। तो कुछ ना कुछ तो सीखा, हाँ जी कर दो तो सीखोगे, नहीं भी आता है तो आना चलोगा, और क्या सीखेंगे यशोदा मैया से। आभूषण लास्ट बचा के नहीं रखना, कुछ दे दो, सब समर्पण कर दो, मिल जाएगा, जितना जो पकड़ के रखता है ना उसको कम मिलता है, जो इधर से आता है इधर से जाने देता है, आते ही रहता है, यहाँ इतनी टोलियाँ कहाँ से आती रहती है, यह सबसे बड़ा उदाहरण है, रोज देखते हैं टोलियाँ, आज नहीं है रोज अपने आप आ जाती है, रोज बांट देते हैं रोज आती है, रोज बांटते हैं रोज आती है, अपने आप ही आती है, ना तो हम लोग किसी से बोलते हैं कि यहाँ कुछ दो, कभी कुछ नहीं बोला ना हम लोगों के पास ना हम लोगों को किसी को कहते हैं फोन करके भाई आपको टोली बांटनी है, कभी कुछ नहीं, अपने आप आती है, रखी है, कल लेके आ जाना। और क्या सीखेंगे, त्याग, और क्या सीखेंगे, सेवा करते रहने, हर प्रकार की सेवा करनी है, झाड़ू लगाने से लेकर तो भाषण देने तक हर प्रकार की सेवा। और ये कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इसको कोई ये नहीं है, सिंपल सी माता है ये, घर गृहस्थी संभालना ये सब करना, और त्याग कितना सूक्ष्म है जीवन में, तो बहुत महान बनने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी बन सकता है व्यक्ति। और मुरली सुनते सुनते अंतमति सो गति, और निश्चय, और कभी भी व्यर्थ में नहीं गई। दादी जानकी जब छोटी थी तो दादी का सिर बड़ा था शारीरिक रूप से, लोग थोड़ा कमेंट करते थे तुम्हारा जो सिर है ना बहुत बड़ा है फिजिकली बड़ा सिर था। जब बाबा के पास आए तो बाबा ने भी कहा बच्ची तुम्हारा सिर बड़ा है, जनक बेटी, बेटा कहते थे, बेटी नहीं, बेटा, तुम्हारा सिर बड़ा है ना तो इसमें बहुत विशाल बुद्धि है तुम्हारी, इसमें रत्नों के अतिरिक्त तो और कुछ मत रखना। दादी ने कहा बस ये बात मैंने पकड़ ली, इसके लिए इस दिमाग में रत्नों के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं रखा, किसी की कमजोरी किसी का क्या ये सब नहीं। और क्या सीखेंगे, एक दो बात लास्ट, वो हो गया आज्ञा का, और क्या सीखेंगे, धारणा हो गया, ऑलराउंडर हो गया, निरंकारिता हो गया, त्याग हो गया, और पालना, सबकी पालना करनी है, कन्याएं जब तक नहीं खाएगी तब तक मैं नहीं खाऊंगी, माँ बनकर रहना, ब्रह्मा कुमारी अर्थात माँ, ब्रह्मा कुमारी अर्थात वो माँ बनना तो बहुत आसान है, शरीर से शरीरों को जन्म देना कोई भी कर सकता है, मातृत्व मदरहुड ऊंची अवस्था है, मदरहुड एक स्थिति का नाम है, वो तो पुरुष स्त्री दोनों के लिए है, वो मदरहुड माँ बन के चलना, ये ऊंची धारणा है बहुत। सब मेरे बच्चे विश्व माता जगन जननी, और नष्टो मा भोग के लिए गुरुवार का भोग, चाहे बारिश हो रही है, हम लोग तो थोड़ी बारिश हुए तो आज छोड़ो, बारिश हो रही है कपड़े लेके गए वहां चेंज करे, इतना प्यार इतना रिस्पेक्ट। तो सभी सीनियर, सभी पूर्वज, सभी यज्ञ के आदि रतन हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, केवल उनकी भक्ति नहीं करते बैठना है, वो भक्ति मार्ग हो जाता है। ये देखा गया है जो भी संस्थाएं आती है संसार में, हेगियोग्राफी कहते हैं इसको, हेगियोग्राफी में क्या होता है उसकी बायोग्राफी भी ऐसे लिखते हैं कि उसमें भक्ति की बातें होती है, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, जैसे चमत्कार कर दिया और उसको अलग कर देते हैं, अब हमें कोई लेना देना नहीं, अब वो वहां है हम यहां है, वो महान है हम तो नहीं, हम उनकी पूजा करेंगे, उनकी आरती करेंगे, उनका वरदान अगर आशीर्वाद मिल जाए दादियों का तो बस मेरा कल्याण हो जाएगा, उनके आगे तो हम कुछ भी नहीं। ये एक भाव है। दूसरा है जो उन्होंने किया वो मुझे करना है, भक्ति नहीं क्रिएट करनी है, तो उनको ज्यादा खुशी होगी। दादियों को खुशी तब नहीं होगी जब हम उनकी पूजा करने बैठे, जैसा उन्होंने किया। उनके जीवन में साइलेंस था, हमारे जीवन में कहाँ है, साइलेंस है ही नहीं, और फिर हम कहते हैं हम उनके अनुकरण कहाँ कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो जीवन बहुत छोटा है, इसलिए क्या कहा गीत में, जो करना है अभी करो, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना, मल मल के तूने अपने तन को जो है निखारा, इत्रों की खुशबू से महके शरीर सारा, काया ना साथ होगी ये बात ना भुलाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल के का भी नहीं ठिकाना। ओम शांति।
कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, परसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, परसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी। मल मल के तूने अपने तन को जो है निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा, मल मल के तूने अपने तन को जो है निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा, पाया ये खाक होगी ये बात ना भुलाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, परसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी। धन कमा ले कर पर दान और धर्म तू प्रभु को अगर है पाना परसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना परसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना कुछ पल की जिंदगानी